निकलता जाएगा। आए हम खुद को बदल, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत बदलता जाएगा, जग बदलता
की मत पर हम क्या करेंगे। हाँ जी, इस धरा पर स्वर्ग लाएंगे। लेकिन धरा पर स्वर्ग लाने से पहले अपने जीवन में स्वर्ग लाना आवश्यक है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले तो हमें स्वयं के जीवन को, जो बाबा ने लास्ट में अभी मुरली चली है व्यक्त मिलन की 15-11, कि आपकी शक्ल बोले, मतलब मुख से सुनाने की जरूरत ना पड़े। आज भी था ना वाणी में याद का मंत्र काम करे, जहां वाणी कर्म काम नहीं करते वहां याद का मंत्र काम करता है। तो सारा जो पुरुषार्थ है वो हमारा स्वयं के परिवर्तन का है। विषय तो परिवर्तन हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत किसमें है, डिफिकल्टी किसमें है, स्वयं के परिवर्तन में। तो स्वयं का परिवर्तन अर्थात अपना मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, ये सारा परिवर्तन हो जाए, कुछ भी पुराना ना रहे, कंप्लीटली नवीनता, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में नवीनता है। और ये लंबे समय की साधना के बाद ही महसूसता होती है कि ये परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम सेवाओं के क्षेत्र में भागदौड़ करते हैं, ज्ञान सुनाना भी सहज होता है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तो छोटे बच्चे भी तोते मौफिक सुना सकते हैं, याद में डिफिकल्टी है। लेकिन याद के लिए तो ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के याद भी ठहरती नहीं है। लेकिन जिस ज्ञान में याद समा जाए, वो ज्ञान का तीर सीधा दिल को लगता है, वो सच्चे दिल से है। एक है बाबा कहते दिमाग से तीर, कि बुद्धि में ज्ञान तो रख लिया, लेकिन हमारे दिल का परिवर्तन नहीं हुआ, स्वयं का परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन तीव्र गति से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ क्या, अर्थात क्या, जो एक सेकंड पहले भी था उसके अगला सेकंड और आगे हो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा ना हो। आज भी बाबा ने कहा ना, भूलें बहुत होती हैं, ब्राह्मण बनकर अगर भूलें की तो कड़ी सजा मिलेगी, और भूलें तो ढेरों होती है हमारी। कौन कौन सी भूलें होती है, पहले अपने आप को ही भूल जाते हैं हम कि हम क्या हैं, आत्मा है कहाँ, सारे दिन में कितना याद रहता होगा, तो ये कितनी बड़ी भूल है। पूरा दिन तो शरीर ही समझ कर चलते रहते हैं, अगर थोड़ा आत्मा याद भी आता है धुंधला धुंधला आता है, और जब सारा दिन निकल जाता है तो हाथ में कुछ रहता नहीं, और फिर क्या होता है गिल्ट कॉन्शियस कि सारा दिन इतना अमूल्य कीमती उसमें बीत गया और हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। और वो भूल हमको सजा का एहसास कराती है। तो वास्तव में हम स्वयं ही अपने धर्मराज बनते हैं, हम स्वयं ही अपने दुश्मन हैं। दुश्मन हमारा कोई दूसरा नहीं है कि हमारे प्रति कोई कौन क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन हम स्वयं के प्रति क्या सोच रहे हैं, स्वयं के प्रति हमारे मन में कौन कौन से संकल्पों की रचना हो रही है। जितना ऊंची दृष्टि से बाबा हमको सोमान की सीट पर बिठाते हैं, हम सारा दिन अपनी सीट को छोड़कर कहां कहां बैठे रहते हैं, दूसरे दूसरे की सीट पर चले जाते हैं अपनी सीट को छोड़कर, और दूसरे की सीट पर बैठेंगे तो दुख तो होगा होगा, कोई भी अपनी सीट पर थोड़ा बैठने देगा। तो सेल्फ लव चाहिए, पहले स्वयं से प्यार करना सीखना है। अगर हमने स्वयं से प्यार करना नहीं सीखा तो दूसरों से कभी नहीं होगा। वो जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार है, कल संडे की मुरली में था ना, ये परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्यार के, इस परिवार के प्रति, परिवार के हर सदस्य के प्रति हमारा प्यार तभी जागृत होगा पहले जब हम स्वयं से प्यार करेंगे। और स्वयं से प्यार करने की विधि कौन सी है, कौन सी विधि है, अपनी कमियों की पहले लिस्ट बनानी है, उन कमियों से निकलना है। तो कि जो भी हमारे में खामियां हैं, कमी कमजोरियां हैं, जो भी हमारी विकृतियां हैं, विकार हैं, उनको निकालने के लिए स्वयं ही जांच करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्वयं की जांच करो श्रीमत पर। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय कायदे बहुत कड़े हैं। बाबा ने कहा थोड़ी सी भी निंदा की तो साक्षात्कार कराऊंगा, आज की मूल्य में था, तो पता चलेगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो हम सारे दिन में कितनी भूलें करते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। कल संडे की मुरली में था, सम्मानदारी बाप तुम बच्चों को सम्मान देते हैं। अब ये ऋषि महावाक्य को भूल जाएंगे कि भगवान हमको आकर पढ़ा गया, कल ही बताया ना कि याद प्यार नमस्ते ऊपर किसी के थ्रू भेजते नहीं है, स्वयं आकर देते हैं, क्योंकि किसी के थ्रू भेजी तो बीच में गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट बाबा ही आते हैं। तुम उस याद प्यार का सारे दिन में उसकी कितनी अनुभूति करते हैं, उसकी कितनी महसूसता होती है। आज भी था, स्वयं बाप तुमको नमस्ते करते हैं, किस लिए, क्यों, आज की मूल्य में भी था। वैसे तो हाँ, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी नमस्ते करने की जरूरत नहीं, थोड़ी होती है, लेकिन बाप तुमको नमस्ते करते हैं क्योंकि तुम विश्व के मालिक हो। तो कितना ऊंचा सम्मान है। अगर हमको ये चीज स्मृति में न रही तो फिर हमारे में वो खुशी, वो नशा, वो आगे बढ़ने की उत्कंठा, उमंग उत्साह कैसे रहेगा फिर। वो ब्राह्मण जीवन का जो मजा है, एक अलौकिक नशा है, अलौकिक अनुभूति है, वो फिर कैसे निर्विघ्न होगा। तो जो मुरलियां ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये मुरली हमारी जो अंदर में सूक्ष्म उदासी होती है उसको समाप्त कर देती है। इस मुरली के अंदर वैराग्य की बीज है। जो महावाक्य सुनने से हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है। इस मुरली के अंदर परमात्म लव समाया हुआ है, सेल्फ लव समाया हुआ है। उस मुरली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको संसार से बिल्कुल डिटैच कर देती हैं। इस मुरली के अंदर इतने जबरदस्त शस्त्र हैं जो आत्मा और शरीर की बिल्कुल अलग अनुभूति कराते हैं। हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है, शरीर से डिटैच होना। बाबा भी किस लिए आए हैं, पावन बनाकर शरीर से डिटैच करके ले जाने के लिए। लेकिन आत्मा और शरीर का इतना तदात्म्य हो गया है, इतना जुड़ाव हो गया है, कि हम दोनों एक ही समझते हैं अपने आप को। सारा दिन हमारे कौन कौन से ख्याल चलते रहते हैं, कौन कौन से विचारों में हम जीते रहते हैं। अगर एक तस्वीर बनाई जाए ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो पहले आत्मा थोड़ी आती है, पहले तो शरीर ही दिखता है, पहले सफेद कपड़े दिखेंगे, बैज दिखेगा, चित्र तो फिर वही वही दिखाई दे रहा है। तो जो मुरली है ये हमको शरीर से बिल्कुल डिटैच करने की तरफ लेके जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मुरली में जो आत्मा को कंप्लीट प्योर बना देती है, उस अवस्था निराकारी अवस्था की अनुभूति कराती है, परमात्म प्यार में डुबो देती है, परमधाम का अनुभव कराती है, स्वर्ग का अनुभव कराती है, जैसे परमात्म गोदी में हम बैठे हैं उसका अनुभव कराती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऊपर ऊपर से मुरली को सुन लिया और उस पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन नहीं किया तो जीवन में उतना परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा लेकिन बहुत मंद गति से होगा। काम बहुत बड़ा है और हमारी स्पीड बहुत स्लो है, तो वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी का हाल हो जाएगा। तो हमको स्वयं की जांच करनी है कि कहां कहां हमारे पुरुषार्थ के पांव लड़खड़ा जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें मन में हम पकड़े रख रखी हैं, कौन कौन सी सारे दिन भूले हो रही हैं। कितने सारे बाबा ने हमको इतने विधियां बताई हैं अपने पुरुषार्थ में चार चांद लगाने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हमको उसमें रस बैठता है। कैसे रस बैठे उसमें, कैसे एकदम लार टपके एक पुरुषार्थ के प्रति। कल बाबा ने कहा ना, कौन सी सृष्टि बाबा स्थापन करने आए हैं, श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि। तो कल श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में क्या क्या कितनी बातें बताई थी, ये कौन सी सृष्टि है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि, इसमें क्या क्या होता है, कितने सारे सोमान लिए थे बाबा ने कहा। तुम बेप्रवाह वाशा बन जाते हो, स्वयं भगवान तुमको जहां, ये वो सृष्टि है जहां स्वयं भगवान सम्मान आकर देता है बच्चों को, वह जहां स्वयं भगवान आकर हमारे गले में सोमान की मालाएं डालता है, वहां जो वरदानों से हमारा श्रृंगार करता है, दिव्य गुणों से श्रृंगार करता है। आज की मुरली में था दिव्य गुण, अर्थात कौन से थे दिव्य गुण, अर्थात चलना फिरना बैठना उठना और खाना। खाना तो जरूरी है, बिना खाने कैसे चलेगी गाड़ी। खान पान का परहेज अर्थात शुद्ध पवित्र आत्मा जहां बन जाती है, हमारा बोलना चलना खाना पीना ये सब दैवी गुणों में आता है। तो बाबा कितने ऊंचे ऊंचे सोमान से देते हैं, ये कोई साधारण सृष्टि थोड़ी नहीं है, ये तो स्वर्ग के भी से भी ऊंची सृष्टि है। लेकिन इस सृष्टि का महत्व हमको तभी महसूस होगा, तभी हम उसका अनुभव कर पाएंगे जब उस सृष्टि के बारे में कुछ सोचेंगे। क्योंकि कोर्स कर लिया, फिर धीरे धीरे मुरली भी सुन रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, एक तो आंतरिक संतुष्टता होनी चाहिए, उसके लिए बहुत अटेंशन की आवश्यकता है, कदम कदम पर अटेंशन। बाबा कहते ना, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया रावण ने क्या किया है, तुम्हारी मत को मार डाला है। आज की मुरली में था ना, माया रावण ने तुम्हारी मत को मार डाला है। बाप तुमको श्री मत देते हैं, जिस श्री मत से तुम्हारी सदगति होती है। तो इतने युगों युगों से तो हम रावण की मत के अधीन ही रहे, अब स्वयं भगवान ने हमारी उंगली पकड़ी है, उसने हमने उसका दामन थामा है, उसने हमारी सुरक्षा कर रहा है, वो छत्रछाया बनकर वो चल रहा है। तो अगर हम उस बातें स्मृति में रखेंगे तो फिर उस सृष्टि भले जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन ठीक लगेगी नहीं वो। तो ये श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि है। तो इस सृष्टि में हमको देखना है वो सृष्टि हमारे जीवन में कहां तक है, क्योंकि जब तक हमने अपने आप को परिवर्तन करने की प्रक्रिया की तरफ हमने अटेंशन नहीं दिया तो दूसरे हमको सारे खराब ही लगेंगे। जितना मर्जी हम भले ऊपर ऊपर से मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अंदर से नहीं लगेगा, अंदर से लगेंगे बहुत खराब आदमी है, क्योंकि हम खुद ही खराब है, हमने खुद का परिवर्तन किया नहीं। जैसा हमने चश्मा पहना वैसा तो दिखाई देगा ना, अवगुणों का चश्मा पहना तो अवगुण ही दिखाई देंगे, क्योंकि अपने अवगुण निकाले नहीं हमने, तो दूसरों के अवगुण भी निकाल अवगुण ही दिखेंगे और मुख से भी उनके प्रति वैसे ही बोल निकलेंगे। नहीं तो इतने लंबे समय से ज्ञान में चलने के बाद अभी भी हमारे मुख से अगर ब्राह्मण परिवार के प्रति ऐसे वैसे अपशब्द निकल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हमने अमल में कहां तक ज्ञान लाया उसको। चलो शब्द तो दूर, अंदर में जो सोच रहे हैं वो, उसका क्या होगा। तो अपने आप को हम खुद ही सजा दे रहे हैं, अनेकों भूलों के भूल भुलैया में फंसे हुए। तो हमको स्वयं की सूक्ष्म रूप से जांच करनी है, अंतर्मुखी होकर अंतर्मुखता की गुफा में देखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं। बाबा ने कहा है कमी कमजोरियों का चिंतन करके उनको निकालना भी तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि बीमारियां क्रॉनिक है, लंबे समय से हैं, और उन बीमारियों से मुक्ति का साधन भी हम खुद ही जानते हैं। स्वयं की बीमारी से निजात पानी है, उसका समाधान करना है, तो उसकी दवाई भी हमको ही पता है कि कौन सी चीजों को देखने से हमको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कहां कहां हमारी दृष्टिवृत्ति खराब होती है, क्योंकि इस दृष्टि में भगवान को समाया नहीं। आय था ना याद का मंत्र, अर्थात आत्मिक दृष्टि का नेत्र, तो वो कहां दिखाई देती है, आत्मा दिखाई देती है नहीं दिखाई देती ना, तो पहले वही स्वीकार करना, दिखाई तो देती नहीं। तो एकांत में पहले स्वयं को महसूस करना, लंबे समय की सूक्ष्म साधना है, गुप्त गुप्त साधना है। आज बाबा ने कहा तुम गुप्त भारी हसो बियर आउट दीवार, गुप्त साधना है स्वयं को देखना, अपने आप को देखना कि मैं आत्मा हूं, अंदर में दिख रही हूं। इन्हीं आंखों से हमने अनेक जन्म तक बाहर की सृष्टि को देखा है और वो सारी रिकॉर्डिंग अंदर है। अब उसको वाश करना और स्वयं को अंदर देखना है कि सचमुच में मैं कौन सी आत्मा हूं, अभी मुझे आत्मा में कितनी मैल रही है, कहां तक हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं वो मैल से हम मुक्त हो पा रहे हैं, कितनी खाद है अभी, कितने उस आत्मा के अंदर वो सच्चा सोना क्यों नहीं। आज की मुरली में से बाप तुमको सच्चा सोना पक्का सोना बनाने के लिए आए हैं, तो हम लोहा है या सोना है, कहां तक हमारी यात्रा पहुंची है, या चांदी है अभी तक। तो स्वयं को देखना है ये ज्ञान, इस ज्ञान में हम जितना डूबे रहेंगे ना हमारा परिवर्तन स्वतः होता रहेगा, और बहुत आसान काम है, थोड़ा अटेंशन रखने की जरूरत है। ये तो मुरली तो सुनते हैं और सबने अनुभव किया होगा, जो मुरली पर पूरा अटेंशन देते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, तो देखा होगा स्थिति अपनी अभी अच्छी बन जाती है, सारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि होता क्या है, जब भी समस्या आती है तो पहले पहले मुरली की तरफ हम ध्यान कम कर देते हैं, समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, और जो मुरली पर अटेंशन देते हैं अगर उनको समस्याएं आती हैं तो मुरली का चिंतन करते करते समस्या अपने आप ही 9-2-11 हो जाती है, भाग जाती है समस्या भी। तो हमको देखना है कि सारे दिन में हम कितना उसका उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग तरीके से मुरली को, अनेकों तरीके हैं मुरली को याद करने के। जितना हम उस पर अटेंशन देंगे वो हमारी कर्मेंद्रिय में समाती जाएगी, वो हमारी दृष्टिवृत्ति में, वो हमारी एक आदत बन जाएगी, और जो आदत एक बार पक्की हो जाती है उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत होगी पक्की उसका छूटना मुश्किल। तो ब्राह्मण जीव ने हमने कौन कौन सी ऐसी आदतें डाल के रखी वो देखना है, ऐसी नई आदतों का निर्माण करना है जिन आदतों से हमारे जीवन की प्रगति हो, ना केवल हमारी बल्कि जो हमारे अंग संग्रह हैं वो भी हमारे से प्रेरित हो, कुछ तो प्रेरित हो। क्योंकि बाबा ने कहा वाणी से नहीं समझेगा कोई भी, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आज की मुरली में तुम हो ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर, है ना, अगर कोई वाणी से कुछ बोलता भी है तुमको माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अभी बोस में चल रहा है, बाबा ने कहा अंत में ऐसी आत्में कमजोर आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा। पिछले मुरली में था ना 15-11 की जो भी लास्ट में बाबा मिलने की थी कि बहुत डिप्रेशन बढ़ेगा, अभी तनाव बढ़ेगा, लेकिन तुमको पहले तैयारी करनी है, तुम्हारा संगम युग के समय से प्यार होना चाहिए। टीचर के लिए बोला है, टीचर अर्थात बाप समान ड्यूटी पर, तुम बाप समान ड्यूटी पर हैं, देखना है स्वयं को, कंपैरिजन करना है बाबा के साथ, देखना है कि बाबा के पद चिन्हों में हम कहां तक सफल हो रहे हैं, कहां कहां हमारे पद चिन्ह कहीं और ही चले जा रहे हैं। देखना है कि बाबा, अगर बाबा के हाथ में मोबाइल होता तो बाबा उसमें क्या क्या देखते, क्या क्या देखते, व्यर्थ देखते बाबा, देखते उसमें ऐसा वैसा कुछ देखते तो क्या करते, मोबाइल अगर बाबा के पास होता तो मोबाइल पकड़ते बाबा, बाबा मोबाइल रखते ही नहीं। क्योंकि एक बार शांतिवन में गुलजार दादी जी के तन में आए थे बाबा, तो बड़े दादी जी थे मुंबई में, उस समय थोड़ा तबीयत उनकी नर्म थी, तो नीलू बहन जी ने ऐसे बाबा को बोला, बाबा ये फोन करके बात मतलब बात कर लो, बाबा बाबा बोलते फोन, बाबा ने फोन नहीं पकड़ा, ऐसे नीलू मैंने हाथ पकड़ा होगा। तो देखना है, ये हमारी साधन है, हमारी साधना उन साधनों के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि साधन भी हमारी साधना में काफी सहायक है, लेकिन वो साधन हमारी साधना का आधार ना बन जाए, उन पर डिपेंडेंस नहीं हो जाए। जो भी हम साधनों का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, वो सारा फिर बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा सारे साधन फेल हो जाएंगे, मुरली भी नहीं मिलेगी कहीं भी, है ना। जो मोबाइल में डाल के रखी है सारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, नेट सेट कनेक्टर खत्म हो जाएगी, बड़ी शांति हो जाएगी फिर तो फिर क्या काम करेगा। इस बुद्धि रूपी बर्तन में हमने क्या क्या रखा हुआ है, और वो तो हम देख रहे हैं संसार की हालत, सारा ऑनलाइन हो रहा है, सब इंटरनेट पर आधारित है। थोड़ा सा अगर भूकंप का झटका लगा छोटा मोटा तो क्या होगा फिर, तो वो सब चीजें होंगी। तो ऐसे समय के लिए स्वयं को तैयार रखना है, तो उसके लिए बुद्धि रूपी तिजोरी में हमको ज्ञान का खजाना हमको भर के रखना है। दूसरा खजाना रखेंगे तो क्या होगा फिर, दूसरे खजाने से संसारिक खजाना होगा तो क्या होगा, मक्खी मच्छर पैदा होंगे उसमें, हमारी बुद्धि वहीं जाएगी। जो हमने अपने सामने चीजें रखी हैं उन चीजों को देखकर हमारी चिंतन भी हमारा वैसा चलता है। तो हमने बुद्धि रूपी कमरे में क्या क्या रखा हुआ है वो देखना है ना। तो अभी आज की मुरली के ऊपर करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, तुम बच्चों को बाप से क्या होना चाहिए, डर। क्यों होना चाहिए डर, क्योंकि पाप बहुत किए हुए हैं, बाप को सच बता देंगे तो आधे माफ हो जाएंगे, तो दो बार बता देंगे तो पूरे हो जाएंगे, अगर एक बार बताएंगे तो आधा माफ हो गया, और दो बार बता देंगे तो फिर भी आधे होंगे तो माफ हो जाएंगे। तो बाप के साथ उनको सच्चा रहना, तो ये जो डर है ना, ये डर कल्याणकारी डर है, है ना। तो कदम कदम हमको देखना है, धर्मराज हमको देख रहा है ना। सीसीटीवी जैसे लगा होता है तो अपने आप उसमें रिकॉर्डिंग चलती है, तो बाबा भी वास्तव में तो देख रहा है ना, हर समय उसकी दृष्टि हम बच्चों के ऊपर है, माँ बाप की दृष्टि बच्चों के ऊपर तो रहती रहती है, तो बाबा भी हम सबको हमेशा देख रहे हैं। तो देखना है कि बाबा की श्रीमत के अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है, उनके अनुरूप हमारी धारणाएं मजबूत हो रही हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो बाप का डर रखना है। और क्या बताया, 10-15 पॉइंट बताओ कम से कम, 15-20 पॉइंट। पूरा पूरा लव रखना है, क्यों, और लव के बारे में और भी बोला, बाप से तुमको पूरा पूरा लव रखना है, क्योंकि बाप तुमको पावन बनाते हैं और साथ ले जाएंगे, और दूसरों के साथ ने बोला रखने के लिए, बोला काम निकालने के लिए, प्यार रखना उनसे देव बाबा कैसे ट्रिक बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, कि क्योंकि तोड़ तो नहीं आना, घर में तो रह नहीं, छोड़ तो सकती नहीं उनको, लेकिन ऊपर ऊपर से ही, अंदर से नहीं, लेकिन उनको महसूस ना हो कि हम ऊपर से कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और महंगा पड़ जाएगा वो तो माना, अर्थात हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उनसे, अनासक्त भाव, बाकी शुद्ध प्यार होना चाहिए उनके। तो एक ये था कि लव रखना बाप से, और क्या था, कौन, हाँ जी, हाँ, पूर्णा होना चाहिए तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए, उसके लिए याद करने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है, अमृत वेला, शुद्ध पवन है, और जो अमृत वेला हम करते हैं, शक्तिशाली अमृत वेला, उस अमृत वेले के समय को सारे दिन में याद करना बार बार, नहीं तो क्या होता है, जो हमने अमृत वेला योग किया उसको हम वहीं भूल जाते हैं, फिर सारे दिन की बातों को पकड़ लेते हैं। तो जब भी हमको दिन में मौका मिले तो उसी अमृत वेले के समय में चले जाना, जिसको टाइम ट्रैवल कहा जाता है, बिल्कुल बैक, कि आज हमने अमृत वेला क्या किया, बाबा से रूहान की अशरीरीपन का अनुभव किया, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव किया, बाबा से वरदान लिए, रूहान की, है ना, ड्रिल की, फरिश्ता बनकर विश्व की परिक्रमा की, अशरीरीपन की गहरी अनुभूति की, शक्ति की स्थिति का अनुभव किया, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया, तो वो अमृत वेले का हमको अनुभव करना है और उसमें नवीनता लानी है। अमृत वेले के जो समय होता है उसमें नवीनता चाहिए, थोड़ा भी हमको सुस्ती नहीं आनी चाहिए अमृत वेले, भले हम थोड़ा योग करें लेकिन शक्तिशाली होना चाहिए, भले आधा पौना घंटा हो लेकिन वो आधा पौना घंटा एकदम रस वाला होना चाहिए, जिससे हमको ताकत लग जाए, भर जाए, महसूसता होनी चाहिए। तो अमृत वेले के लिए लेकिन सारा दिन अटेंशन रखने की जरूरत पड़ती है, उसमें हमारा सारे दिन में कम से कम बोलें, सार वाले बोल हों, युक्तियुक्त बोल हों, अर्थ सहित बोल हों, कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, और अधिक से अधिक साइलेंस रहे, अंतर्मुखता की अवस्था हो, एकांत की स्थिति का अनुभव हो, मौन की अवस्था हो, तो अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि वो निराकार परम धाम से आ रहा है। और इस बॉडी के, इस बुद्धि के अंदर हमने अगर साकारी सृष्टि के सारे समाचार भरे हुए हैं तो वो ठहरेगा कैसे? वो परम पवित्र प्यार से ऊपर सवेरे सवेरे बरसेगा, तो बुद्धि भी हमारी उतनी शुद्ध होनी चाहिए ना? तो इस पात्र को हमको शुद्ध बनाना है, क्योंकि वो इतना प्योर लव है, इतना प्योर लव है कि हमको उसको महसूस करने के लिए बुद्धि बड़ी ताकतवर चाहिए, और वो ये ज्ञान, इस ज्ञान के बल पर बुद्धि ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी, तो हम योग की शक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। तो हमको अमृत वेला शक्तिशाली करने के बाद सारे दिन में बीच बीच में वो अमृत वेले के टाइम को याद करना है, ताकि जहां से हमने छोड़ा है उसी से हमारा आगे चले। ऐसा नहीं कि हम शाम को बैठे थे सारा दिन भूल गए, अमृत वेला भी भूल गए कि सवेरे क्या किया था, नहीं, वहीं से योग चालू कर देना दोबारा जहां से छोड़ा था, जहां छोड़ा वहीं पॉज कर दिया, फिर वहीं चालू, सवेरे कहां छोड़ा था। तो एक अमृत वेला है, तो अमृत वेला का समय एकांत का समय होता है, साइलेंस का समय होता है। और अमृत वेले कुछ भट्टी वाले भी आए हैं तो यहां बहुत साइलेंस में रहना है, नहीं तो मैंने देखा, क्योंकि घर में आप बोलने की आदत तो पड़ी होती है तो बोलना शुरू कर देते हैं, तो जितना हो सके अपने, एक तो मोबाइल साइलेंस कर देने के, भारी काम है ये भी तो क्योंकि बुद्धि वहीं जाती है। होता क्या है, अब यहां आए हैं साधना करने, लेकिन बुद्धि घर में जाएगी, और घर में जाएंगे तो बुद्धि यहां आएगी, उल्टा हो जाता है। घर में जाएंगे तो मधुबन याद आएगा, मधुबन में आएंगे तो घर याद आएगा। तो यहां आए, यहां की पूरी चार्जिंग करनी है, अपने मन बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना लेना है, इतना चार्ज कर लेना है कि वहां जाते ही सारे वाइब्रेशन चेंज हो जाए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, क्यामत का समय है। बाबा ने कहा ना, क्यामत का समय है, अब चल रहा है, हिसाब किताब पूरे चुकतू करने हैं योग बल से। योग बल का तुम्हारे पास हथियार है, शस्त्र है, तुम हो अहिंसक युद्ध है, तुम युद्ध के मैदान पर हो। तो ये था एक अमृत वेला। और क्या कहा बाबा ने, आज टाइटल कितने लिए, कौन कौन सा टाइटल दिया, तुम हो कौन कौन, हाँ जी, देहधारी को गुरु नहीं बनाना, हाँ, देहधारी गुरु गति नहीं करेंगे, दुर्गति हो जाएगी, और तुम कौन हो, एक मुरली में टाइटल था, सिद्धि स्वरूप, और मुरली में, ये तो प्रधान में आ गया, तुम हो राज ऋषि, राज ऋषि अर्थात ऋषि अर्थात पवित्र, राज अर्थात स्वयं पर स्वराज्य करने वाले, आत्मा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा नियंत्रण हो आत्मा का, है ना। और इसको प्यार से समझना है, जो मन बुद्धि संस्कार ही आत्मा के तीन बच्चे हैं। अब जैसे घर में माता पिता के बच्चे होते तो उनको कितना प्यार से संभालते हैं, तो ऐसे आत्मा के मन बुद्धि संस्कार ये तीन बच्चे हैं, इनको उसी तरह से पालना करनी है, है ना। बाबा ने कहा ना, याद में बैठेंगे, माया के तूफान आएंगे, लेकिन तुमको परवाह नहीं करनी है, आज की मुरली में था। तो ऐसा नहीं है कि हमको याद में बैठेंगे तो माया नहीं आएगी, माया तो आएगी, लेकिन हमको समझना है, मन को बड़े प्यार से समझाना है, क्यों इधर उधर जाता है, इतने जन्म जन्म से मन को भटकाते रहे, मिला के आकर कितना नुकसान हुआ उसका। तो मन को समझाना है, बुद्धि को समझाना है, उनको शक्तिशाली संकल्पों की खुराक देनी है, ताकि हमारा परिवर्तन हो। बुद्धि में अच्छे अच्छे विजन क्रिएट करनी है, है ना। जैसे देखना है कि हम परम धाम में बाबा के साथ बैठे हुए हैं, और बाबा से सारी शक्तियां आ रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं, बाबा के सारे खजाने मुझ में आते जा रहे हैं। वास्तव में ये भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा, जन्मते तुमको मैंने सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी बार बार हमको स्मृति करनी पड़ती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति बनेगी, वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। तो बार बार स्मृति का पानी हमको देना है, ताकि मन बुद्धि उसमें रमण करते रहे, और वो मन बुद्धि जो करेंगे वो हमारे संस्कार परमानेंट हो जाएंगे, और संस्कार जैसे होंगे वैसा ही हमारा संसार हो जाएगा। तो एक ये बात थी, क्या करना है, अपने मन बुद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए सोचना हमेशा, मैं राज ऋषि, उसका चिंतन बढ़ाना है, तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। और क्या था आज, बाप कौन है, बाप है सर्वशक्तिमान, आज की मुरली में था। तो तुम्हें कैसा बनना चाहिए, कमजोर, तो कितने शक्तिशाली होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम शक्ति मांगते रहते हैं बाबा से, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो, या हमको वरदान दे दो। तो वास्तव में वो तो उसने सारा कुछ दे ही दिया है, लेकिन उसकी महसूसता करनी है। संडे की मुरली में था ना, पिछले से पिछले संडे की मुरली में, के जो बच्चे आकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं वो निराकार को भी साकार में अनुभव करेंगे, निराकार सो साकार आकारी का साकार में अनुभव करेंगे। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे अंग संग हो। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा की समीपता समीप लेके जाता हमको। बाबा जैसे हमारे अंग संग घूम रहा है ना। क्योंकि ज्ञान किसका है, जिसकी चीज जी दी होती वो तो स्वतः याद आता हमको। तो ज्ञान के प्रति प्यार हमारा बढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान हमेशा बुद्धि में टपकता रहना चाहिए, है ना। जैसे शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद टपती रहती है, ऐसे हमारे बुद्धि में भी ज्ञान की बूंदें टपती रहनी चाहिए। काल की मुरली में था, अगर एक बूंद भी सुनी तो, एक बूंद भी ग्रहण की तो क्या होगा, स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना। और ज्यादा बूंदें ग्रहण की तो स्वर्ग से भी आगे, तो कहां जाएंगे, तो उच्च पद पाएंगे, ये कहा था बाबा ने। तो ये था। और एक टाइटल दिया था, कौन सा, आज की मुरली में कौन सा टाइटल दिया था, याद करो। ज्ञान सूर्य, बाबा ने स्वयं का बताया था, ज्ञान सूर्य प्रगटिया, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है सारा ज्ञान अंधेर विनाश करने के लिए। तो ये सोचना है कि ज्ञान सूर्य बाप मेरे सामने है, तो खाली उसको सोचना नहीं, ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान हमको, अगर ज्ञान कौन कौन सा हमारे पास अभी ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ब्राह्मण परिवार का ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान, हाँ जी, सृष्टि चक्र का ज्ञान, माया का ज्ञान, माया का ज्ञान तो सबसे पहले होना चाहिए, ड्रामा का ज्ञान, है ना। तो ये सारा देखना है, तो वो ज्ञान सूर्य हमारे सन्मुख है, तो क्या होना चाहिए, उस ज्ञान सूर्य की सारी किरणें हमारे में आती जानी चाहिए। किरणें अर्थात उसके पॉइंट, वो हमारे स्वरूप में दिखाई देने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी शक्ल बोले, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, ज्ञान सुनाने का टाइम होगा नहीं, उस समय तो चेहरे से अनुभव होगा ना, है ना। जैसे कुछ दिन हमको एक फोन आया किसी का, पहले बोला अभी मैं हम संस्था से नए जुड़े हूं, तो हमको तो हर बीके भगवान लगता है ऐसे, क्योंकि वो बोला हम बहुत सारी संस्थाओं में गए हैं लेकिन अभी कुछ महीनों से संस्था से जुड़ी हूं, तो जब भी बीके से मिलती हूं हर बीके भगवान लगता है। तो वो अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि संसार से सभी थक चुके हैं अभी, क्योंकि सत्य तो है नहीं है, वो वहां तो स्वार्थ है सब, मान शान की इच्छा है, और यहां तो स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना हर बच्चे के अंदर वो लक्षण दिखाई देंगे, तो वो समय अभी आ चुका हुआ। तो हमको जितना भी समय हमारे हाथ में है, इसलिए बाबा ने कहा संगम युग से तुम्हारा प्यार होना चाहिए, है ना। और सबसे जास्ती कौन याद करता है, बांधेलिया, कौन से बांधेलिया, जो घर में रहती हैं और बाहर में रहती वो, तो कौन कौन सी बांधेली है इधर, तो बांधेली भर के रहना अच्छा है ना फिर, तो कि ज्यादा याद आएगा। और वास्तव में बात सही, जितने बंधन होते ना उतना याद आता है, और वो थोड़ा याद भी बहुत काम करता है, है ना। तो सबसे जास्ती बांधेलियां याद करती हैं। और क्या कहा बाबा ने आज मुरली में, हाँ, अगर योग बल से ही हिसाब किताब चुक तो नहीं करेंगे तो मोचरा खाना पड़ेगा, है ना। और योग बल जमा कर लिया तो क्या खाना पड़ेगा, मानी खानी पड़ेगी, मानी और मोचरा। अब बताओ कोई एक बार खिला दे और ऊपर से लगा दे तो कैसी हालत होगी वो। तो ऐसा हमको हमारा नहीं होना चाहिए कि हम इतना पुरुषार्थ भी करें और बाद में कुछ ऐसे वैसे काम भी करते रहे, भूले करते रहे और फिर बाद में सजा खानी पड़े, तो उसका क्या फायदा। तो हमको देखना है कि इस ब्राह्मण जीवन का हम कितना सुख ले पा रहे हैं। और क्या कहा बाबा ने, बुद्धि को चलाना है, बुद्धि के घोड़े दौड़ाने हैं। और क्या कहा बाबा ने, कहा तुम हो, तुम्हारी है रेस, वुमेन रेस, तो बुद्धि के घोड़े दौड़ाने हैं, बुद्धि को डल नहीं करना है, वो शार्प तभी बनेगी बार बार उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, बिना मेहनत काम होने वाला नहीं है ये। हाँ, सोल कॉन्शियस बनो, कर्म कॉन्शियस नहीं। तो सोल कॉन्शियस बनने से क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियस से ही हमको सुप्रीम सोल की अनुभूति होगी, उसका प्यार तभी अनुभव होगा। सारा बताया ना पुरुषार्थ किस चीज का है, देह से डिटैच होने का पुरुषार्थ। तो जब भी हमें एकांत में बैठे, अकेले में बैठे, तो हमारा अधिक से अधिक यही प्रयास होना चाहिए इस बॉडी से बिल्कुल डिटैच, और उसके डिटैच होने की हमको खुद एक नई ड्रिल तैयार करनी है। बाबा की सारी ड्रिल सुनी है हमने, वो भी करनी है, और खुद अपना, बाबा कितना अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, है ना।
जैसे भी आप बैठे बैठे यहां बैठे बैठे सभी अभी झोपड़ी में पहुंच जाओ। बात सोचो मैं अकेला बैठी हूं, अकेली बैठी हूं या अकेला बैठा हूं। महसूस करो सभी झोपड़ी में अकेला हूं और सामने बाबा है। तस्वीर से बाबा निकल के बाहर आया, गद्दी पर बैठा है और फिर बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सिर पर रख दिया। ऐसे सभी महसूस करो। तो ये क्या है, यहां होते हम डिटैच हो गए शरीर से। यहां बैठे बैठे महसूस करो, पिछली बार हम बाबा से कहां मिले थे, डायमंड हॉल में या ओम शांति भवन में। महसूस करो कहां बैठे थे, याद करो क्या सुना था, कौन सी मुरली थी, याद करो बार बार, तो वो टाइम ट्रेवल होगी। यहां बैठे बैठे जैसे बाबा ने कहा ना चार धाम की यात्रा करो, तो उसका अर्थ क्या है, कुछ स्थूल की चीज नहीं है वो, सूक्ष्म चीज, अर्थात हमको शरीर से डिटैच होने की बाबा युक्ति बताते हैं। क्योंकि हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से हम सहज डिटैच हो जाते हैं। जैसे हम शांति स्तंभ सोचेंगे तो सोचो शांति स्तंभ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए वहां क्या क्या लिखा हुआ है ना, और बाबा वहां सारे खड़े हैं, है ना। इस शांति स्तंभ से क्या हो रहा है, सारे संसार को शांति का प्रकाश जा रहा है, सारे संसार को पवित्रता का प्रकाश जा रहा है, सारे संसार को लाइट माइट का प्रकाश जा रहा है, तो वो देखना है वहां शक्ति का प्रकाश जा रहा है। तो डिटैच करने का बड़ा बहुत सहज तरीका है, बॉडी से अपने को डिटैच करना है। कभी कभी यहां से डिटैच होकर सोच लो सूक्ष्म बतन में बैठा हूं और बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं, या फिर अभी सभी ड्रिल करो अपना अपना हाथ अपने अपने सिर पर रखो, ऐसे रखो सभी अपना हाथ, हाँ, और यहां याद करो बाबा वरदान दे रहे हैं। कौन कौन से वरदान, निर्विघ्न भव, सदा खुश मिजाज भव, सदा उड़ती कला वाला फरिश्ता भव, संपूर्ण पवित्र आत्मा भव, देह से डिटैच भव, अव्यक्त वतनवासी भव, सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा भव, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, लाइट ऑस माइट ऑस भव। ऐसे सोचते रहो तो हमारी नींद भी गायब हो जाएगी और एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होगी। क्योंकि इन कर्मेंद्रियों को भी हमको इन्वॉल्व करना है। वैसे ज्ञान तो हमारा जो है ज्ञान शरीर को भूलने का है, लेकिन इस शरीर के साथ हमारा प्यार होगा तो शरीर को भी संपूर्ण पवित्र बनाना है। ये कर्मेंद्रियां बिल्कुल भी हलचल में नहीं है, उनको शीतलता से भरपूर कर देना, प्योरिटी से भरपूर कर देना, परमात्म वरदानों से भरपूर कर देना, परमात्म शक्तियों से भरपूर कर देना है। और जितना हमारा शरीर स्वच्छ होगा तो आत्मा भी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती है। तो ये शरीर भी हमारा साधारण नहीं है, अमानत है, भगवान की दी हुई अमानत है। तो इस शरीर के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुना रहे हैं किसी को भी। तो जितना हमारे शरीर का भी शुद्धिकरण होगा, आत्मा स्वयं उस सीट पर बैठेगी, क्योंकि आत्मा भी प्योर है और वो प्योरिटी की सीट पर ही बैठेगी, गंध में थोड़ी बैठेगी। तो शरीर का भी शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। एक तो ये है ज्ञान के माध्यम से, दूसरा खान पान की भी शुद्धि चाहिए। भूलें तो कितनी होती, बाबा ने बताया ना जितनी भूलें करते हो तो क्या होता है, सजा खानी पड़ेगी। तो भोजन भी कितनी भूलें हो जाती है, पहला निवाला खाया याद में, फिर भी दूसरा थोड़ा याद में, तीसरा और थोड़ा याद में, चौथा भूल गया और लास्ट में फिर याद है, ओहो याद तो किया ही नहीं, तो कितनी भूलें हो जाती हैं। तो एक एक निवाले में परमात्मा शक्तियां समाई हूं, एक एक निवाले में परमात्मा उस वरदान याद करते करते खाओ, मुरली के पॉइंट याद करते करते खाओ। क्योंकि मन को काम चाहिए, कुछ ना कुछ तो सोचता रहेगा वो, तो उसको खाली नहीं रखना है। तो स्थूल रूप से भी हमको घर में एक्टिविटी करते रहना है, है ना, जैसे बताया हाथ सिर पर रखना, या सोचो ऐसे हाथ रख दिए और बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे बाबा ने बड़े दादी जी को सारी शक्तियां बिल की थी, है ना, ऐसे सोचना है हमारे बाबा ने हाथ पकड़े हुए हैं और संपूर्ण शुद्धिकरण हो रहा है, सारी शक्तियां मुझ में समाती जा रही है, परमात्म शक्तियों का फुल करंट मुझ में आता जा रहा है, फुल चार्जिंग हो रही है और उस करंट से सारे विकर्म, अंदर की विकृतियां, पाप सब नाश हो रहे हैं। महसूसता करनी है उसकी कि बाबा ने हमारे हाथ पकड़े हैं, और या फिर कई बार बाबा को ऐसे पकड़ लो दोनों हाथों में, भगवान इस समय तुम्हारी कहां है, मुट्ठी में, स्वयं बाबा ने कहा हुआ, तो उसको योग में बैठे बैठे से मुट्ठी में पकड़ लो, दोनों मुट्ठी में पकड़ लो, एक में बाबा एक में दादा, बाप दादा दोनों को पकड़ के रख लो। तो सूक्ष्म जो स्थूल की क्रिया हम करते हैं वो सूक्ष्म में याद रहती है, फिर उसका महसूसता ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव नहीं होता, नहीं तो फिर ऊपर कौन जाता है? हमारा स्थूल शरीर थोड़ा नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है। तो सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करने के लिए ये कुछ स्थूल चीजों को करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। क्यों हमको योग करते करते भारीपन होता है? क्योंकि हमारे संकल्प स्थूल में चल रहे हैं, वो स्थूल वाले संकल्प सूक्ष्म में नहीं जा रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर को भी एक्टिव करना है। आज बाबा ने कहा ना, तुम किससे मिलते हो? संपूर्ण ब्रह्मा से, आज की मूल्य में था। तो अपना संपूर्ण रूप भी सामने खड़ा करना है, चलते फिरते अनुभव करना है, ये मेरा जो स्थूल शरीर है वो अलग हो गया और मैं संपूर्णता की जो हमारी स्थिति है, जो हमारी अंतिम मंजिल है, उसको लेकर चल रहा हूं। चलते फिरते अनुभव करना है, जैसे दो चल रहे हैं, एक लाइट वाली काया और एक स्थूल शरीर, वो अलग है और ये अलग है। अब मैं स्थूल काया, सूक्ष्म काया, उस स्थूल में प्रवेश कर जाती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ, फिर उसमें प्रवेश कर जाती हूँ, अनुभव करना, महसूस करना है। चार पांच बार सोया हूं, ऊपर मैं सूक्ष्म बॉडी वाला और स्थूल वाला नीचे सुला दिया, उसको देखना उसको बार बार, क्योंकि सारा पुरुषार्थ हमारा किस चीज का है? शरीर से अलग होने का है, देह से डिटैच होने का है। तो युक्तियां रचनी अपने आप उसको। इसलिए बाबा ड्रिल क्यों कराते हैं हमको कि अभी चले जाओ सूक्ष्म वतन में, अभी चले जाओ परम धाम में, अभी चले जाओ पूज्य स्वरूप में, चले जाओ ब्राह्मण फरिश्ता बन जाओ, ताकि हम शरीर से डिटैच होना हमारी एक नेचुरल नेचर बन जाए, मेहनत ना लगे, सहज काम हो जाए। तो वो देखना है। तो नए नए योग के प्रयोग करने हैं, और योग के नए प्रयोग करेंगे तो रस बैठेगा। और हमारा सारा फोकस क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ भी किस लिए कि हमारा योग निरंतर लगा रहे। तो नई नई चीजें मुरली से ढूंढनी है और नई नई, इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपनी युक्तियां रचो। हजारों युक्तियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि जो बाबा ने बताई केवल वही है। वो तो केवल हमको एग्जाम्पल दिया है। जैसे स्कूल में जो मैथमेटिक्स की किताब होती है तो उसमें सारे सॉल्वर थोड़े प्रश्न किए होते हैं, एक दो एग्जाम्पल देंगे और बाकी सारे प्रश्न अपने आप करने होते हैं। बाबा भी तो हमको एक दो एग्जाम्पल देते हैं, बाकी सारे सोल्यूशन तो हमको अपने करने हैं। तो हजारों मेथड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा चित्र अपना जेब में रखो, है ना, तो बाबा को भी अपने जेब में रखो, पकड़ के दिल में बसा लो अपने। कोई पूछे तो आपके दिल में कौन है, तो बाबा ने क्या कहा था, कौन है? बाबा है। और बाप के दिल में कौन है? बच्चे हैं। तो महसूस करो कि मैं बाबा के दिल में समाया हूं, एक बड़ा सा दिल है और वो चमक रहा है ना, बाबा की किरणें चमक रही हैं और मैं सीधा उसमें समा गया। बड़ा सा दिल अर्थात शरीर से तो समा गया उसमें, क्योंकि पूरे शरीर का भी शुद्धिकरण हो रहा है। ब्राह्मण अर्थात क्या? चोटी, देवताओं से भी उत्तम। तो देवताओं जो कि कंचन काया है, उनका शरीर कितना निर्विकारी है, तो ये भी तो वैसा होना चाहिए ना, ये तो उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाहर से तो हमारी गिरती गला है। तो ये कितना ब्राह्मण जीवन का महत्व कितना है, चोटी पर है हम, क्योंकि स्वयं भगवान का साथ है, जो उसकी ज्ञान गुण शक्तियां वो सारी हमारे में इस समय है, देवताओं में उतनी नहीं है। क्योंकि जैसे ऊपर से आत्मा उतरी, भले एक ही सेकंड हुआ, लेकिन वो गिरती कला में मानी जाएगी। केवल हम ब्राह्मण आत्मा है जो चढ़ती कला में, इस समय उड़ती कला में, इस समय जंप लगा रहे हैं। तो वो पुरुषार्थ करना है। तो योग की नई नई युक्तियां रचनी है और उनको लिखना है, क्योंकि भूल जाती हैं। होता यह है कि योग में जब बैठेंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे विजन क्रिएट होंगे, बहुत बाबा के प्रति प्यार या उमड़ेगा, लेकिन बाद में भूल जाता है। तो साथ में एक डायरी रखनी है, या तो उसे इसमें याद रखो, यानी तो डायरी रखनी है और वो अनुभव लिखने हैं। और जब भी ऐसी व्यवस्था ऊपर नीचे हो तो उन अनुभवों को फिर से रिवाइज करना है, पढ़ना है। तो नई नई युक्तियां रचनी है, योग के नए नए प्रयोग करने हैं, है ना। तो बाबा को हाथों में पकड़ लो, सिर पर रख दो, है ना, मुट्ठी में संभालो, दिल में संभालो। बाबा कहते ना, तुम मेरे सिर के ताज हो, तो बाबा को भी अपने सिर का ताज बना लो, बाबा को बिठा लो। सर्व संबंधों से तुम मुझे याद करो, याद करना उसने क्या क्या प्राप्तियां कराई हैं, कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। सारा जीवन ही तो बदल गया, हमारी सोच ही बदल गई, संकल्प ही बदल गए, वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कृति बदल गई, कितना है। काली था ना मुरली में वाहन, अगर बच्चे भूल जाते हैं देवमान में रहते तो फिर क्या करते हैं, फिर देही बनने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर सोचते हैं मैं देही हूं, क्योंकि यात्रा लंबी है और इस यात्रा को हमको अकेले ही क्रॉस करना है, दूसरा कोई साथ में आने वाला नहीं है, ना कोई मम्मी, ना कोई डैडी, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ये तो खुद को क्रॉस करनी है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। तो उस संसार में देखना है कि सचमुच सारे संबंध उससे हम निभा रहे हैं, उनको अनुभव करना है, स्थूल अनुभव करना है कि सचमुच बाबा मेरी मदर है तो साथ में चल रही है, बाबा मेरा फादर है तो साथ में चल रहा है, बाबा मेरा पति है, पतियों का पति, वो साथ में चल रहा है। तो सारा अनुभव करना है, वो बच्चा है तो वो उंगली पकड़ के चल रहा है। तो हर चीज का हमको अनुभव गहराई से बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन उस समय नवीनता, कुछ क्रिएटिव करना है, नया नया करना है। और क्या बताया आज की मुरली में? हाँ, क्योंकि तुम विश्व के मालिक हो। घड़ी घड़ी नमस्ते संसार में थोड़ा किया जाता है, लेकिन बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं क्योंकि तुम विश्व के मालिक हो। तो विश्व के मालिकों को स्वयं भगवान आकर नमस्ते करते हैं। और क्या बताया? हाँ जी, हाँ, किसी के द्वारा नहीं भेजता वो, कल बताया, कल बाबा भेज के चले गए थे संडे को। ठीक है, बोला आपने। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? हाँ, शिव बाबा राम, शिव बाबा है असली राम, वो वाला तो दूसरा त्रेता वाला हो सकता है, वो वाला राम नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो हमको देखना है, अपना एक अटेंशन रखना स्वयं को, जरूरी नहीं चार्ट डेली चेंज हो सकता है, हर दिन का नया चार्ट होना चाहिए, नहीं तो एक जैसे चार्ट रखेंगे ना बोर हो जाएंगे उसमें, है ना। एक है, इसलिए बाबा ने कहा ना चार्ट जांच रखनी है, क्योंकि ईश्वर के कायदे बहुत कड़े हैं, कब भूल हो जाती है भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं चलता है, फिर शाम को जब याद आती है, जब एकांत में बैठते तो पता चलता है, वो सारा टाइम तो ऐसे चला गया। तो खुद का ही चार्ट क्रिएट करना है ना। तो बाप का डर चाहिए, इस डर में फायदा है। तो देखना है कि सचमुच डर है, डर अर्थात मुरली को हम अच्छी तरह से अध्ययन करें, उस पर अटेंशन दें, कम से कम 8-10 पॉइंट तो बुद्धि में रहें, और वो उनको बार बार रिवाइज करते रहे, उससे हमारे मन बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, और जो एक बार आदत पड़ जाएगी ना उसका रस ही अपना है। हमने देखा है अगर 8-10 पॉइंट याद कर लें तो चलते फिरते वही पॉइंट याद आते रहते, और जब हमारे संत सेवक में कोई आता ना तो वो याद रहे, जैसे बताया याद का मंत्र अर्थात आत्मिक दृष्टि का नेत्र, तो हम आज सारे दिन में मिले तो धीरे धीरे वो याद आया, आत्मिक दृष्टि का नेत्र, भले देह दिखाई दे रही है लेकिन कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, कर्मेंद्रियां ऐसा वैसा कर्म नहीं कर बैठेंगी जिससे विकर्म पैदा हो जाए कोई, देह तो दिखाई देगी लेकिन आत्मा सीट पर सीट बैठी है। तो हमको उसका अभ्यास करना है, तो चलते फिरते वो मुरली के पॉइंट बार बार उसको रिकॉल करते रहना है, याद करते रहना है, ताकि आत्मा का मन बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, आत्मा शक्तिशाली बनते है। ज्ञान क्या है? आत्मा का भोजन है। जैसे हम अपने आप को शक्तिशाली, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन छोड़ते हैं कभी, वो तो हम एक्स्ट्रा नई रेसिपी तैयार करके खाते रहते। आत्मा के प्रति हमारी कितनी जागृति है, कितने सुजाग रहते हैं, कितने सतर्क रहते हैं, उस भोजन की तो प्लानिंग बनाते रहते हैं, जन्मदिन की प्लानिंग बनाते रहते हैं, ये प्लानिंग कहां बना रहे हम? जन्मदिन के लिए बाबा तो बिल्कुल मना करते थे पहले, लेकिन अभी परिपाटी बढ़ती जा रही है, समय और परिस्थिति अनुसार ये भी ओके है, बिल्कुल राइट है, लेकिन हमको देखना अंदर ही अंदर अपने पुरुषार्थ के प्रति पूरा सुजाग रहना है, नहीं तो हमारे ना बोल बदलेंगे ना दृष्टि बदलेगी। बड़े लंबे समय से चल रहे हैं, सफेद कपड़े पहन के चल रहे हैं, इतने इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन देखा जब मुख से बोल निकल जाते हैं तो मन को भी दुख होता है कि क्या किए इतने साल, अभी भी अगर हमारे मुख से ऐसे वैसे शब्द निकल जाए तो क्या कहेंगे उसको, फिर बाबा कहते हैं लानत है ऐसे जीवन पर, बाबा तो बहुत दूसरी बोला बेइज्जती हो जाएगी, आय के मूल्य में था ना, हाँ तो इतनी हमारी बेइज्जती ना हो जाए, भगवान के बच्चे और बेइज्जती कितनी खराब बात होगी, फिर सबके सामने बाबा ने कहा साक्षात्कार कराऊंगा, निंदा की है सब पता चलेगा इस चीज की निंदा की है, क्यों बोले हम किसी के लिए कुछ, जो करेगा सो पाएगा सीधा, कर्म सिद्धांत बाबा ने सब दिया हुआ है। तो अगर किसी में कोई कमजोरी है भी तो हमारा फर्ज बनता है उसको शुभ भावना शुभ कामना से पूरा करना, क्योंकि बाबा ने कहा वाणी से नहीं बदलेगा, याद का मंत्र अर्थात मन से है, मन मना भाव का मंत्र। तो सारा सूक्ष्म गुप्त पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ की दौड़ में कौन आ गया कुछ कहा नहीं जा सकता, जो दिखाई दे रहे हो सकता है वो सबसे पीछे ही हो, और जो नहीं दिखा रहे वो सबसे आगे दिखाई देगा, ये तो वो ही जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, तो बड़ी मार्जिन है आगे जाने की अभी भी। और आगे जाने का सोचने नहीं, वास्तव में अभी का जो सुख लेना है, क्योंकि अभी का जो प्रसाद से जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। वो है स्वयं से प्यार करना है सचमुच, कि मैं इस बॉडी के अंदर जो रहती हूं इतनी प्यारी सोल हूं, क्योंकि भगवान ने हमको अपना लिया है, तो वो प्यार का सागर है, तो मैं उतनी प्यारी होंगी, तभी तो उसने बनाया ना। उसने हमारे में विशेषताएं देखी हैं, उन्हें हमारे गुण देखे हैं, हमारे अंदर वो निखार देखा, उसने प्योरिटी देखी कि यही आत्मा काबिल है संसार को स्वर्ग बनाने के काबिल है, तभी तो उसने प्यार किया। तो सेल्फ लव करना है, स्वयं से प्यार करना है, सेल्फ की जांच करनी है, धीरे धीरे अपना अंतर जांच करते रहना है कि किस गति से हमारा परिवर्तन हो रहा है। स्वयं को साधारणता में नहीं रखना है, और समान अंदर स्वीकार क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम साधारण संकल्पों से बाहर निकलते नहीं है, साधारणता से जी रहे हैं कि बस हम फलाने गांव के हैं या फलाने घर के हैं, ये हमारे मेंबर हैं, उसी में जी रहे हैं। सबसे पहला मेंबर भगवान को बनाना, अगर उस फैमिली रहते भी हैं, घर गृहस्थ विवाह कितने में रहते हैं, तोड़ तो निभाना है, प्यार तो रखना सबके, लेकिन अंदर में सोचना है कि सबसे पहला मेरा जो नजदीकी है, संबंधी है, वो स्वयं भगवान है वो, और ये को बोलने की जरूरत नहीं है, तो सारा अंदर अंदर की बात है, और उसको साथ में रखने से घर के वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएंगे, घर वालों की मनोवृत्तियां भी चेंज हो जाएंगी, घर वाले अपने आप सहयोगी बन जाएंगे, अपने आप समय पर सहयोग देंगे वो। तो ये ज्ञान में रमणीकता है, नवीनता है, इस ज्ञान में खुशी है, उमंग उत्साह है, आगे बढ़ने की एक उत्कंठा जागृत होती है। ज्ञान को तो जैसे खाते रहना चाहिए, बीच बीच में 8-10 पॉइंट आ गए ना, मुंह में चबाते रहो उसको, जैसे जितने हम निवाले खाते हैं रोटी की वो खाते हैं, तो उतने ज्ञान के पॉइंट भी याद होने चाहिए, कम से कम उतने तो। अगर 15 क्या कहते गिटकी, एक तो निवाला कहते, दूसरा गिट्टी एक और भी शब्द कहते हैं, तो उतने हमको पॉइंट याद होने चाहिए कम से कम। तो ऐसे नई नई युक्तियां करनी है खुद, ताकि ब्राह्मण जीवन का मजा आ जाए, थोड़ा खुशी तो चेहरे पर दिखनी चाहिए ना। हमको हमेशा रतन दादी जी मिलते थे, तो जो भी सामने भाई बहन बैठे होते थे, अरे थोड़ा तो मुस्कुराओ, भगवान मिला हुआ, थोड़ा चेहरे से दिखना चाहिए। लेकिन पूरी दूसरी स्मृतियों को पकड़ के रखा हुआ हमने, बाहर की अतीत की स्मृतियां छोड़ दो, उनको कुछ कर थोड़ा नहीं सकते, उनको जो हो गया वो हो गया, काम खत्म है, कुछ भी किया संसार में हमने, भले जितने मर्जी बुरे कर्म किए, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, एक ही मात्र साधन है भूलना उसको, और वो भूलेगा तब जब नई स्मृतियां हमारी बुद्धि में रिकॉर्डिंग होगी। तो हमको जो पास्ट में कर दे उसको घबराने की बात नहीं है, बाबा ने कहना माया से भी बेप्रवाह बनना है, उसकी परवाह नहीं करनी है, जो बीत गया सो बीत गया, काम खत्म हुआ, फुल स्टॉप। बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र दिए हैं इतने सारे ज्ञान के, तो उनको यूज करो, फुल स्टॉप को बिंदु दिया। ड्रामा भी बीता सो बीता, वो कहा 5,000 साल बाद होगा, याद थोड़ी नहीं रहेगी अभी, तो छोड़ देना उसको, बीती बातों को पकड़ना नहीं है। ओम शांति।